ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत ही भाग्यशाली है, फिर कहेंगे सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा ने हम सभी को इतनी बड़ी दुनिया 7 बिलियन कितने और ही ज्यादा होंगे शायद, उसमें से चुन करके अपना बच्चा बना लिया। हम भगवान के बच्चे बन गए और सभी दुनियावी अग्नियों से बाबा ने हमको बचा लिया। देखो अभी संडे की वाणी में था, बाबा की मुरली में था कि अंत में कितनी 4 प्रकार की आग लगेगी। सामने देखने में आएगी अग्नि 4 प्रकार की, सभी को याद होगा 4 प्रकार की। पहली तो होगी विनाश की आग, बोलो विनाश, महाविनाश की अग्नि। बाबा का बार बार 37 36 से कह रहे हैं विनाश आया, विनाश आएगा, आएगा। बाबा बच्चे कहीं समझते होंगे, आप में भी बैठे हो शायद, तो बाबा तो ये कहता ही रहता है विनाश आएगा, विनाश आएगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कहते हैं लोग कुछ। हमें तो विनाश के हम नजदीक जा रहे हैं, ऐसा फीलिंग आती है कि विनाश सामने और हम विनाश के सामने जा रहे हैं। एक तो विनाश की ज्वाला होगी, अग्नि होगी अंत में, अभी भी है, अभी जहां भूकंप होता है कई आग लगती है, 5 तत्व नुकसान करते हैं तो क्या होता है, जो मरते हैं तो वो आग में जलते हैं ना, वो तो सफर करते हैं, उनके लिए तो विनाश हो गया। तो ऐसी भी, और अंत में तो ये लगा 5 तत्व तो हमारे खिलाफ होंगे, क्योंकि उनको काम दिया गया, हमारे सेवक है, बाबा कहते तुम्हारे सेवक है, सारी सृष्टि की सफाई करनी है, साफ सुथरा करके आपके हवाले होना है, तो पहले सफाई तो होनी चाहिए ना। तो विनाश की आग होगी तो हमें क्या होना पड़ेगा कि हम उसमें क्या करेंगे, चले जाएंगे उसके अंदर? नहीं, बाबा ने एक गुण बताया कि हम निर्भय होके रहे। अभी से ये गुण धारण करने के, निर्भयता का जो गुण है, हम निर्भय बन के रहे, डरे नहीं, निर्भय होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी कैसा भी समय आए, लेकिन हमें निर्भय बनना है कि हमें ये मालूम है इसके बाद क्या आने वाला है, हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, हमने इतने समय योग किया है, ज्ञान सुना है, बाबा की सेवा की है, बाबा के मददगार बने हैं, तो क्या है, हमें तो कमाई करके जा रहे हैं, हमारी मुट्ठियां तो भरी हुई है, खाली तो नहीं है ना, कैसे खाली है कि भरी हुई है, बोलो है ना भरी हुई, बोलो। देखिए आप तो मुट्ठी भर के जा रहे हैं, कौन सी, वो कमाई जो ईश्वरीय कमाई उसकी, बाकी वो मुट्ठी धन की मुट्ठी नहीं, वो तो यहां ही छोड़ना है। तो ये एक उस समय ये निर्भयता चाहिए कि हम तो जा रहे हैं अपने, हम तो कमाई करके जा रहे हैं, हम तो निर्भय है, और शरीर तो विनाशी है पता आपको, और आत्मा तो अविनाशी है, शरीर छोड़ेगी अगला जन्म, पहले बाबा के साथ बैठेंगे परमधाम में, फिर हम जाएंगे अपने नए घर में, सत्युग की दुनिया में जाएंगे, जब तक विनाश नहीं होगा तब तक तो जा ही नहीं सकते। तो ये बुद्धि में होना चाहिए अभी से ही, इसका प्रैक्टिस हो कि हम जा रहे हैं, ये विनाश जो है हमारे लिए नेमत है। एक तो ये आग लगनी है, और दूसरी आग क्या लगेगी अंत में, और ज्यादा बढ़केगी, वो होगी विकारों की आग। ये भी बात है, भले अभी कुछ आप समझो हम तो ठीक है, कोई बात नहीं, पवित्र है, सब कुछ है, ये है वो है, तो उस समय और आंतरिक चीजें भी निकल आती है, कई चीजें, और दुनिया में तो होगी विकारों की आग, उसमें भी क्या करना है। उस विकारों की आग में बाबा ने क्या कहा उस दिन मुरली में, बच्चे अपने अनादि और आदि स्वरूप में तुम पवित्र हो, शुद्ध आत्मा हो, ये सदा याद रहना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं कैसे हम, बाबा ने हमको बच्चा बनाया तो ये इस चीजों से बच जाएंगे, अगर बच्चे बन के रहेंगे तो। और तीसरी कौन सी आग लगेगी, कहा कि देह और देह के संबंधों की जो खिंचाव है ना, वो लगाव है, खिंचाव है, वो भी अग्नि देखने में आएगी। उससे भी बाबा ने क्या कहा कि सर्व संबंध मेरे साथ, सर्व प्राप्तियां मेरे साथ, या नहीं बाबा ही तुम्हारा संसार है, हमारा संसार कौन है, भगवान ही है। जब वो संसार, भगवान संसार बन गया तो इनसे क्या लेना है। और चौथी कौन सी आग थी, चौथी है ये, बताइए है किसी को याद है। हाँ, पश्चाताप की आई, तो बहुत बड़ी आग है। अगर देखो अभी आप यहां आए, बाप वाणी सुनी, बाबा ना आके कि ये स्वरूपों को याद करो, दुआएं दो, दुआएं लो, ये कितनी बातें बाबा ने सुनाई, कितनी धारणाओं की बातें सुनाई। अगर हमने फिर भी धारण नहीं किया, पुरुषार्थ शुरू नहीं किया, तीव्र पुरुषार्थी बनो ये बाबा ने कहा नहीं किया, तो अंत में क्या हो, बाबा ने तो ये कहा, ये कहा, बाबा ने भी कहा, दादियों ने भी कहा, इसने भी कहा, उसने भी कहा, परंतु हम अलबेले रह गए, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, अपना तन मन धन सफल नहीं किया तो क्या होगा, फिर अंत में तो भाई पश्चाताप तो होगा होगा। हम तो अभी भी कहीं देखते हैं, बहुतों को देखा, जो शरीर छोड़ा हमारे सामने, जो तीव्र पुरुषार्थी तो खुशी खुशी गए, और जो ढीले पुरुषार्थी थे, जो सुनते रहे और कान से निकालते रहे, उनको उनको तो पश्चाताप होगा। तो इन चार प्रकारों की अग्नि से हमको बचना है, तो क्या होगा, बाबा के क्या बना है, बच्चे बन के रहे, बचना है तो बाबा के बच्चे बने। तो हम बाबा ने हम सबको चुना है, बाबा ने हम सबको बच्चा बनाया है, तो हमें भी आज से कितने साल पहले, 62 वर्ष पहले, बोलो आप में से कई तो 62 वर्ष के भी नहीं होंगे शायद, हमें 62 वर्ष पहले बाबा ने चुना, अपना बच्चा बनाया। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम तो मेरे बच्चे हो, और अपना बच्चा बना लिया, और इन पांच जो आने वाली अग्नि है उससे पहले ही हमें सावधान करके बचा लिया। सच कहते हैं, बहुत कुछ तो जैसे बहुत चीजों से तो बच गए, नहीं तो क्या होता है, अगर नहीं होते तो छोटा सा परिवार, छोटे छोटे संबंधी, ये वो अग्नि में क्या होते हैं, वो बीमार है, वो दुखी है, ये दुखी है, क्या छोटा है वो, आप तो अनुभवी होंगे बैठे हुए। तो कहने का मतलब है बाबा ने आज से 62 वर्ष पहले हमको बचाया, हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और बहुत ये ज्ञान मिला। देखो बहुत दिनों से बाबा की वाणी में आ रहा है, वाणियों में मैंने एक दिन वाणी का निशान लगाया, 63 बार बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, 63 टाइम्स। आज की वाणी भी देखो, अब गिनती करो बाबा ने कितनी बार कहा आत्मा समझो, देही समझो, देह मान छोड़ो, सारा जो उसका फोकस था बाबा को याद तो करना है, बाबा को याद करने से पहले अपने को याद करना है, ये बहुत बाबा जोर दे रहे हैं, क्योंकि द्वाप सात्विक में तो होते ही बाबा ने जैसे कहा आत्माभिमानी, वहां तो देह भान है ही नहीं, बाप अपने को नेचुरली आत्माभिमानी है, द्वापर में गिरते इसलिए है कि देह अभिमान आ जाता है, वही अग्नि शुरू होती है, और कल युग में तो देह अभिमान की तो आग लगी हुई है, बात मत पूछो, देह अभिमान है, देह अभिमान है, शरीर शरीर शरीर, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। वो उन्नति करनी है तब भी शरीर की, वो एक्सरसाइज करनी है तब भी शरीर की, जहां भी देखो शरीर की बात, शरीर की बात को, पढ़ाई भी शरीर की, सब चीज शरीर की, कोई आत्मा की पढ़ाई भी कोई नहीं कराता है। तो एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखो तो बताइए, तो दुनिया में सब शरीर की बात हो रही है, देह मन का बोलबाला है। तो उस वक्त बाबा ने हमको यही ज्ञान दिया, पहले हमें ये ज्ञान दिया, सच कहता हूं पहले दिन ये ज्ञान सुना कि आत्मा है, यही सुनते ही एकदम बुद्धि में बैठ गया। उस समय की ज्योति बिंदु की बात ही नहीं थी, 57 में तो अंगुष्ठ सदृश कहते थे, अभी ज्योति बिंदु का ज्ञान नहीं आया था। मैं समझता हूं हम आत्मा अंगुष्ठ सदृश है, मस्तक में है, जैसे टीका लगाते हैं ना, ऐसे कुछ वो कोई शक्ल की बात नहीं, बस मैं आत्मा हूं इतना समझा, शरीर से भिन्न हूं, सारा जीवन बदल गया। हम बताएं आप, कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड डिवीजन पर फर्स्ट डिवीजन था, पता नहीं फर्स्ट ईयर था, इतना सुनते ही ऐसी धारणा, थोड़ी बहस तो की, ऐसी धारणा हुई, पूरा जीवन ही बदल दिया। क्या बदला? खान पान बदला, कंपनी जो हमारे दोस्त थे वो बदल गई, दिनचर्या बदल गई, सब कुछ बदल गया। बताइए विद इन वन डे टू डे, ज्यादा हमें कुछ सोचने की दरकार नहीं पड़ी। फिर हमने जो हमारे एक भाई थे ओम प्रकाश भाई, जो इंदौर जोन के इंचार्ज थे, और हमने कहा भाई हमें और पूरा ज्ञान सुनाओ, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, चारों युगों का, राम का, रावण का, सारी बातें सुन सुन के कपाट खुल गए। आप सोचो बंदर है बाबा का ज्ञान, देखो दुनिया सारी, अभी देखो रावण जलाया, आप लोगों ने भी गए होंगे देखने, रावण जलाने गए थे कोई आप में से? रावण का पुतला जलाया, रावण जलाते हैं, राम रामायण होती है, तीर चलते हैं, ये होता है, भविष्य जटायु है, कितनी लंबी चौड़ी कहानी, कहानी को या वो तो ग्रंथ बना दिया। और बाबा ने क्या कहा उसके बारे में? एक लाइन बोली बाबा ने, क्या कहा? अरे बच्चे, 10 से बड़ा रावण तो कोई हो ही नहीं सकता। कहा कि नहीं कहा? ये दुनिया मानती है 10 से बड़ा रावण लंका का राजा। और बाबा ने उसको क्या एक्सप्लेन किया, कितनी वंडरफुल बात की। अरे बच्चे, राम की सीता कोई चुरा सकता है? सोचो आज भी किसी की स्त्री चुराया तो कितने केस हो जाते हैं। तो राम, श्री राम जिसका अयोध्या का झगड़ा हो रहा है अभी तक, वहां ही उसकी स्त्री कोई चुरा सकता है? ये कौन कह सकता है? ये नॉट एनी ह्यूमन बीइंग, स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी के ये महावाक्य हैं कि राम कौन है और रावण कौन है। पांच विकार लड़के, पांच विकार नारी के, ये रावण है और लंका क्या है, सारा ऐसी सुंदर एक्सप्लेनेशन, युक्ति युक्त जो मन में बुद्धि में बैठ जाए, ये कौन दे सकता है? स्वयं कभी सुना हमने? मैंने कहा ये ज्ञान तो कोई इंसान के बस का नहीं है। फिर देखिए महाभारत की बात देखिए क्या है, इतनी महाभारत दिखाते हैं, अभी भी वो आती है, उसमें आती थी पहले, ये टीवी में आती थी, लोग सारे उसको देखते थे, ये हो गया वो हो गया, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये वो लड़ाई झगड़े, मारा मारी, ये और श्री कृष्ण जी ये कर रहे हैं। आप बताओ, भगवान को दिखाते हैं कि लड़ाई करा रहा है, आप बताओ। एक तरफ श्री कृष्ण जी भगवान है, फिर दिखाते हैं वो युद्ध करा रहा है, या फिर क्या था? अहिंसो परम धर्म। तो बाबा ने क्या कहा? देखो इतनी बड़ी महाभारत को बाबा ने एक ही सेंटेंस में कहा, बच्चे अरे के गीता ज्ञान तो मैंने दिया, कब दिया? द्वापर के अंत में नहीं, कलयुग के अंत में दिया। सारी महाभारत बदल गई। महाभारत का जो वो था, यानी जो चीज थी, जो रियलिटी थी, वो सामने आ गई। ये बातें सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा, ये कहू स्पीकिंग, सारा बड़ा जो फिलॉसफी है बदल चुकी है। तो ये और योग सीखा तो एकदम बाबा का वो याद आ गई, शक्ति आई, खुशी आई, मजा आया, ये देखा। और तो जितनी पॉइंट्स थे ज्ञान के, 84 लाख वीडियो, ये वो सारी बातें सुन के आश्चर्य लगा कि ये जो ज्ञान है वंडरफुल ज्ञान, मैं बताऊं आपको, ये ज्ञान वंडरफुल है, साइंटिफिक है, लल्लू पंजू ज्ञान नहीं है, मान जो साइंटिफिक रीजनेबल है, आप करो रीजन, रीजनेबल है, प्रैक्टिकेबल है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस, और वो प्रूफ है सब बात, शास्त्रों में कई बातें मिलती है इसकी। तो ऐसा ज्ञान सुनकर के ये निश्चय हुआ ये स्वयं भगवान का ज्ञान है, ठीक है ना, कौन ज्ञान दे रहा है, ये स्वयं भगवान ज्ञान दे रहे हैं, आप बताओ, बताओ तो क्या करना चाहिए फिर हम सभी को बताओ, या तो निश्चय ना हो, जिसको ये निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान आकर ज्ञान दे रहा है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, चक्कर की आयु बताइए 5000 वर्ष, पहले हम क्या समझते थे, लाखों पता कितने वर्ष समझते थे, उसकी पूरी एग्जैक्ट बताइए, कलयुग में क्या होता है, सतयुग में क्या होता है, सारी युक्ति युक्त बातें बताई, ये निश्चय होता है भगवान पढ़ा रहा है, तो क्या करना चाहिए, जिसको निश्चय हो जाए वो क्या करेगा बताओ, बोलो, हमें निश्चय हो गया तो हम क्या करते फिर बोलो, तो हमने ये सोचा बाबा आप आए हैं, भगवान आया है पढ़ाने के लिए, तो ये मन में आया जो बाबा का कार्य सो हम बच्चों का कार्य, ये होना चाहिए, हमने ऐसा किया। इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी ऐसा जैसे नहीं पढ़ रहे, हम बताएं आपको, इतनी बड़ी मुश्किल पढ़ाई, कभी उन दिनों में बाबा आ रहे हैं, मम्मा आ रहे हैं, कभी कोई एग्जीबिशन है, कभी कुछ है, सारा टाइम हमारा उसमें गया। तो पहली बार मेरे से पूछा कि मैं कहीं फॉरेन गया था कि सबका सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट डे कौन सा था आपका, एक भाई ने पूछा, व्हाट वाज यूर, व्हेन वाज यूर हैप्पीएस्ट डे, तो आप बताइए, आप भी सोचो कि आपका सबसे खुशी का बड़ा दिन कौन सा था, सोचना आप। मैंने बताया भाई खुशी, उनने कहा आपको जब ज्ञान मिला होगा तो खुशी का दिन होगा, मैंने कहा दैट वाज माई हैप्पी डे, जब ज्ञान मिला मुझे, ये ज्ञान सुनाया ना आपको, जब ये ज्ञान मिला आई वॉज वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी हुई, लेकिन खुशी के हैप्पी के बाद क्या हैप्पियर, उसके बाद हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट डे तो और कोई था। तो जब ये ज्ञान सुना भगवान आया है तो चलो भैया हम उन जिनके द्वारा भाई ये ज्ञान दिया जा रहा है उनको तो मिलना चाहिए ना, बाबा या हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये भाई जिनके द्वारा ज्ञान मिला उनको मिलने के लिए 5-7-8 दिन 10 दिन हुए होंगे भाई, जो बाबा कहते ना जिसको निश्चय होगा भागे भागे आएंगे, तो हम भी चले बाबा से मिलने के लिए, वहां दिल्ली में आए और बाबा से मिलने के लिए आए, तो उस वक्त बाबा भी थे, मम्मा भी थे, पूरा परिवार भी था, सेंटर बहुत कम थे, मैं कहता हूं सारे इंडिया में 5-7-10 सेंटर मुश्किल से थे, अब तो कितने हैं 8000 कितने कहते हैं, उस वक्त 10 सेंटर भी मुश्किल थे, हम जब आए ज्ञान, तो सब दादियां भी वहीं थी, दादी प्रकाश बनी, दादी और इतनी दादियां थी वहां पर, उनसे भी मिलना हुआ। जब बाबा मम्मा के सामने हम गए क्लास के बाद, तो देखा बाबा मम्मा को, तो क्या देखा, एक हंसों का, फरिश्तों का कहो जोड़ी, एक तरफ बाबा एक तरफ मम्मा, व्हाइट चमकते हुए चेहरे, ललाट और ब्लिचिंग आईज, जिसके ना वो एकदम खींचने वाली आंखें और पर्सनैलिटी जबरदस्त बाबा की। बाबा कहते ना मैं साधारण तन में आता हूं, मैं तो नहीं मानता, वो उनका तन भी असाधारण था, देखा जाए तो बिल्कुल देखने में भी असाधारण लगता था, अगर वो कहीं बड़े भारी हजूम में खड़े हों तो ये सबसे नंबर वन वो होंगे, इतना अच्छा तन भी ऐसा था असाधारण। उनसे मिले तो बाबा की गो मां कैसे मिलते थे बाबा मामा से, अभी तो आप क्या करते हैं, कभी हाथ जोड़ता होगा दादी को, कोई पांव पड़ता होगा, कई नए नए आते हैं पांव भी पड़ जाते हैं, कोई कुछ करता होगा, कोई फूल देता होगा, कुछ वहां कुछ नहीं, ना फूल देना है, ना हाथ जोड़ना है, ना पांव पड़ना है, कुछ सीधा बाबा मामा की गोदी में जाना है। बस बाबा ने गोद में लिया तो देखो बाबा ने क्या कहा, महावाक्य वरदान क्या दिया, आप तो उनके आश्चर्य कहेंगे। पहला बाबा का महावाक्य था, बातचीत करने के बाद बच्चे तुम इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, उनको पता था, बताया था ना, अरे बच्चे को पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल होती है, वो तो बहुत टाइम लगेगा। तो बाबा को कहते थे अभी विनाश आया क्या है, जैसे अभी है ना हम कहते आया क्या है विनाश, तब भी बाबा कहते थे विनाश सामने खड़ा है, और लगता भी था कि खड़ा है, कोई ना कोई बात ऐसी होती थी विनाश सामने दिखता भी था, रियली एक एक बाबा के कहने की बात नहीं थी, लगता था ये हुआ था, लड़ाई होगी, ये होगा, लगता था कि विनाश हुआ क्या हुआ, अब भी लगता है, तब भी लगता था, आगे लगेगा। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये इतनी पढ़ी टाइम लगेगा बहुत, आपको 4-5 साल तो लगेंगे, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। ये थे बाबा के प्रथम महावाक्य मेरे लिए, बताइए। रिवाज भृगु ऋषि बाबा थे, तो देखा जब मेरे मिले पहले ही जानते थे कि ये पढ़ाई बच्चे के काम नहीं आएगी। हमने कहा फिर पढ़ने से क्या फायदा है, कोशिश की कि पढ़ाई छोड़े, लेकिन पढ़ाई वो करनी पड़ी, अपने लौकिक परिवार के दबाव में करनी पड़ी। और फिर मम्मा से मिले, कितनी शीतल गोद मम्मा की, माँ की, उनसे मिलना हुआ, थपथपाया, प्यार किया, टोली खिलाई। तो ये बाबा जैसे अभी आप टोली तो हाथ से लेते, पर बाबा मम्मा मुख में टोली डालते थे, खिलाते थे, खिलाया, और मिलके वापस आए अपने जहां पटियाला में पढ़ते थे। तो बाबा को लेटर लिखा हमने कि बाबा ये आपने भी कहा और हमारा भी, तो विनाश सामने दिखता है खड़ा है, तो एक इंग्लिश में लेटर लिखा मैंने इन इंग्लिश, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, मैं सुनाता हूँ आपको, शायद देखो अच्छा लगे। मैंने कहा आई डोंट वॉन्ट टू बिकम डिजाइन बिल्डिंग्स एंड बट आई वॉन्ट टू बी ए स्टोन इन द ह्यूज एडिफिस, एक बहुत बड़ी जो बिल्डिंग सत्यु की बना रहे हैं उसमें मैं भी एक पत्थर स्टोन बनना चाहता हूँ। आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स बट आई वॉन्ट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परम धाम एंड गोइंग टू गोल्डन एज। देन आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू डिजाइन मशीनरी बट आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ किंग एंड क्वीन मशीनरी विच वी हैव इन्वेंटेड। ये जो बाबा कहते थे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है, क्या क्या बनने आया आप यहां पर, क्या बनेंगे बोलो, क्या बनना है, किंग या क्वीन, क्या बनना है, बोलते नहीं आप बताओ क्या बनना है, किंग एंड क्वीन बनने आया ना आप, देखो ये मशीनरी है। तो हमने कहा हम भी एक पार्ट बनना चाहते हैं। तो बाबा को लेटर लिखा, बाबा को बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा बच्चा तो बहुत वैराग में आ गया है, कहता बी पेशेंट, मुझे लिखा लेटर जवाब दिया इंग्लिश में लिखा, बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू यूर को इंजीनियर्स एंड टू यूर पेरेंट्स। ये बाबा का डायरेक्शन आया। हम बताएं हम भले और जो बाबा कहता 8 घंटे योग करो, 4 घंटे योग करो, वे करो, वो शायद ना कर सकते हो, लेकिन बाबा ने जो डायरेक्शन दी उसको हम जरूर फॉलो करते थे। जब बाबा ने कहा अपने को इंजीनियर को दो ज्ञान, तो हमें देना शुरू कर दिया। उन दिनों में त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी, वो लेकर के बस में बांटते थे, फिर जो उतरते थे उनको समझाते थे, वो सब बात मान लेते थे। ऐसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में हमारी क्लास चालू होगी, तो वार्डन कहे अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, यहां तुम सत्संग बना दिया है, चलो यहां से। तो हमने छोड़ दिया वहां पर, अपने कमरा लिया, फिर मकान लिया, फिर सेवा केंद्र खोला। तब दादी फर्स्ट टाइम दादी जानकी हमें हमारे पास आई, कई दफा कहती है देखो हम तुम लोगों को ब्रह्मा भोजन बना के खिलाया था, उनको याद कराती है हमको उन दिनों में। 1958 होगा या पता नहीं कित क्या ना कौन सा होगा, यही कुछ सन होगा, 9 होगा कुछ होगा तब। तो इस प्रकार से दादी जानकी जी का कनेक्शन हमारे साथ हुआ, तो ज्ञान सुना, फिर बाबा मम्मा से मिलने कई दफा आते रहे, जाते रहे, होते रहे, सब हो रहा। एक बार हम मधुबन में आए और हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, तो कैमरा था, ब्लेजर पहना हुआ हमने, बाबा उन दिनों में जो है ना अभी आजकल ऊपर मधुबन में क्या है ये शांति स्तंभ, बिल्कुल साफ मैदान था, टेनिस कोर्ट था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, केवल एक ही बिल्डिंग थी आपको मालूम हो जहां यीशु दादी बैठती है, और वो वहां पर क्लास भी वहीं लगती थी, बाबा मामा वहीं आते थे, 15-20-25 बैठते थे, वो बाबा आते, पहले मम्मा आती थी फिर बाबा आते थे, क्लास कराते थे, ऐसा था। और बाबा क्या कहते थे बच्चे, मुझे आश्चर्य लगता था, बच्चे बड़े बड़े हाल मिलेंगे, बाबा कहते थे, बहुत यहां भीड़ लगेगी, तब कहते थे भीड़ लगेगी, बहुत लोग आएंगे, एक्टर्स आएंगे, बाबा कहते हैं मुरली में भी आता है, वो पॉलिटिशियंस आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। मैंने कहा बाबा अभी तो कुछ दिखता नहीं है, बाद में लेकिन हुआ, अब क्या क्या अभी जब 17 तारीख को बाहर निकले, बाहर चलने को जगह नहीं थी, बड़ी भीड़ थी ना, भीड़ अभी भी भीड़ है, कितने लोग आए बताओ, पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, एक्टर्स भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जो बाबा ने कहा वो सब सच हो रहा है। कहां रिट्रीट सेंटर, हैदराबाद और रायपुर, यहां वहां इधर उधर, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े हॉल, सब मिल रहे कि नहीं मिल रहे, कब बाबा ने कहा था, 1958 में कहा था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो चीजें प्रत्यक्ष हम अब देख रहे हैं। और बाबा ने और क्या कहा हुआ फिर, बच्चे जो तुम इन आंखों से अभी देखते हो वो क्या होगा, नहीं दिखेगा, ये भगवानों वाच, बाबा अभी भी कह रहे हैं कि बच्चे मुरली में आता ना, जो चीज तुम अभी इन आंखों से देख रहे हो वो नहीं दिखेगा, और जो नहीं देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे, सत्य की दुनिया, वो देखने में आएगी। जब वो सत्य हो रहा है तो ये भी सत्य होना है, हम बताएं आप, उसके लिए तैयारी करनी है। तो ये देखा, मैं बता रहा था, तो हमने जब बाबा ने कहा कि ज्ञान दो, तो वहां मेरी बहुत स्टूडेंट लग रहे, हमने बैर में सेंटर बना, अपना सेवा केंद्र शुरू कर दिया। फिर हम लौकिक फादर, बाबा ने कहा अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो, वहां गए लौकिक घर में छुट्टियों में, अपने सारे परिवार को ज्ञान दिया, माता जी को, पिताजी को, बहनों को, भाइयों को, सब ज्ञान में आ गए। 8 मेंबर हमारे पूरे ज्ञान में चलते थे उस वक्त, लेकिन उनमें से अब सब चले गए, बाकी हम 2 बचे हैं, ये भी सुन लो, क्यों कितने साल हो गए, 62 साल में तो शरीर छोड़ना ही पड़ता है ना, केवल 2 बचे हैं अभी। तो सब ज्ञान में चलते थे, वो भी ज्ञान में आ गए, कमाल हो गया। बाबा ने कहा देखो आपने मेरी बात को साकार कर दिया कि सब बच्चे ज्ञान में आ गए। तो हमारे लौकिक फादर कैसे ज्ञान में, हम बताए, एक वंडरफुल बात थी उनको, वो बड़ी भक्ति करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति, भागवत पुराण, ये वो बहुत करते थे। उसने मुझे कहा, मेरे लौकिक फादर ने, कि आपका ज्ञान तो बड़ा अच्छा, लेकिन अगर मुझे आपका बाबा कुछ दिखा दे तब मैं ज्ञान को मानूंगा। मैंने कहा मुझे तो अभी तक दिखा नहीं, उन दिनों में ध्यान में बहुत जाते थे, हमारी एक ध्यानी दादी थी, ऐसे ऐसे करके हाथ कभी फल देंगी कभी कुछ देंगी, बड़ा वो ध्यान का बड़ा पाल चलता था, हम देखते थे हार लाना ये लाना सामने दिखाते थे। तो मैंने कहा बाबा मैं तो लौकिक फादर से कहा मैं कैसे कर सकता हूं, ऊपर वाला शिव बाबा दिखाए तो दिखाए। अचानक क्या हुआ, एक दिन हम सब बैठे थे घर में योग में, उठ के खड़े हो गए, मैं रियल बात सुना रहा हूं, खड़े हुए और वो इधर किसी चीज को पकड़ते हैं, फिर इधर पकड़ते हैं, किसी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा उनको कुछ दिखा रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, ये मुझे खुशी हो रही थी, मेरे कोई बाबा करा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद बड़े उदास होके उतरे नीचे आए, कहते हैं मुझे श्री कृष्ण दिखाई दिया, छोटा सा बच्चा, मैं उसे पकड़ता हूँ, मेरे पकड़ में आया नहीं, मैं यहां पकड़ू तो वहां जाए, वहां पकड़ू तो वहां जाए, बाबा ने खेल दिखा दिया उसको। फिर आपके बाबा जी वो आए जो हमारे झाड़ में, उन दिन में झाड़ तीन मूर्ति छप गया था, इन्होंने कहा कि तुम जब धारणाओं पर चलोगे, ज्ञान मानोगे, निश्चय बुद्धि मानोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। कहता ठीक, मैं तो मानूंगा, क्योंकि उसको साक्षात्कार तो लोग तो देखने के लिए तरसते हैं श्री कृष्ण को, और वो भगत थे तो उनको देखने में आया। क्या मानूंगा, पूरा जो भी आप कहेंगे सब माना जी। फिर खान पान ठीक किया, ये किया, वो किया सब। फिर अगले गुरुवार को फिर भोग लगा, वो उठ चले गए। ऐसे गए, फिर श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उनके इतने आंसू है, इतने आंसू है कि उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आई टेल यू। और मैं बड़ा खुश, मैंने कहा देखो हमारे सामने ये क्या हो रहा, सारे परिवार वाले खुश, गांव वाले गए, ये छोटा सा ये क्या भगत जी को क्या हो गया, पहले भगत जी क्या था। तो ऐसे सारा परिवार ज्ञान में आ गया, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। और वो तो ध्यान का पाठ खुल गया, हम कहे लौकिक बात, हम बाबा को भी बाबा कहते, बाबा पूछो ये जमीन बेचनी है कि नहीं बेचनी, पूछ के कहते बाबा कहते नहीं, ये काम करना है कि नहीं करना, नहीं अब ये नहीं। एक एक संदेशा बाबा से पूछ के आते, इतने वो अच्छे संदेशी बन गए, लोग हैरान ये क्या इनको हो गया, बताओ संदेशी थे बड़े। या मधुबन में आते तो मम्मा उनको बिठा दी थी गद्दी पर, जब भीड़ कम होती थी कि जब भोग लगाओ ऐसा, तो बाबा ने भी उनको बहुत प्यार किया कि ये बाबा का बच्चा, इन्हें बहुत भक्ति किया तो बाबा भक्तों का है ना भगवान, तो बाबा ने भी साकार, बाबा ने भी उनको बहुत स्नेह प्यार दिया। यहाँ कई महीने रहे, फिर तो गांव में जाते थे, खेती थी वहां चले जाते थे। तो इस प्रकार से उसके ज्ञान में आने से हमारा लौकिक सारा परिवार ज्ञान में आ गया, पूरा ज्ञान चल पड़े। अब जैसे कैसे हमने इंजीनियरिंग भी पास कर ली, बड़ी बिना किसी पढ़ाई के पास की, हम सच कहते हैं। हम जाते थे एक लेक्चर मिस, हम जाए क्लास में तो वो लोग कई हफ्ते के बाद आए क्लास में, हम कहे वो कहे एपी मेहता हमारा नाम था, यस सर, लोग हंसते थे, देखो ये आ गया बहुत समय के बाद, उसको लेक्चर समझ कैसे आएंगे। इंजीनियरिंग में तो एक लेक्चर मिस करो दूसरा समझ नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ परवाह ना किए, वो कुछ ना करते हुए भी अंत में इंजीनियरिंग में पास भी हो गए। अब बताएं आप, विदाउट एनी स्टडी, क्योंकि देखो हम बताए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि देखो ये ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए कहा था, मैं क्या था पहले, गांव का छोरा था, कहा था ना भाई मुरली में, फिर मैंने ये बाबा ने क्या बना दिया, बाबा ने रामानुसार बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, और अब बिजनेसमैन ना होते हीरे जवाहरात के भी इतना बड़ा यज्ञ चलता कैसे। तो ये रामानुसार किया तो भगवान ने ना देखा, जो हम भी गांव के छोरे थे, हमें भी बाबा ने इंजीनियर बना दिया ताकि लोगों को कह सके भी मैं बाका बच्चा इंजीनियर तो हूं ना, आते हमारे पास ज्ञान अमृत भवन में, हम पीएचडी है, हम ये है, हम वो है। मैंने कहा हाँ जी मैं भी इंजीनियर हूं, डोंट वरी, मैंने भी इंजीनियरिंग पास की हुई है। तो बाबा ने सेवा के लिए बनाया, हमारी इच्छा नहीं थी, अपने आप पता नहीं कैसे पास कराया मालूम नहीं, पास हो गए, उनकी डिग्री भी लेने नहीं गए, लेकिन फिर लेनी पड़ी क्योंकि हमें पासपोर्ट के लिए चाहिए थी, लेना पड़ा। तो कहने का मतलब है अगर हम डिपेंड करते हैं बाबा पर, बाबा को अपना साथी बनाते हैं, साखी बनाते हैं, उनको अपने साथ रखने की सेवा में लग जाते हैं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस प्रकार से चलते रहे। एक बार बाबा के पास आए हम मधुबन में, आते रहते थे हर साल, तो बाबा वो मतलब टेनिस कोर्ट में बाबा कुछ खेल रहे थे। बाबा क्या खेल रहे होंगे आप बताओ, आप कहेंगे बैडमिंटन, नहीं वो खेल रहे थे वो बाबा वो क्या नाम, अब जो गेंद फेंकते हैं ना फिर वो बल्ले से लगाते हैं, वो क्रिकेट बाबा खेल रहे थे एट द एज ऑफ 82। आप बताइए, धोती कुर्ता पहना हुआ, बैट लगाया हुआ, बैट ऐसे ले करके, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कमाल है, इस एज में बाबा देखो क्या खेल रहे हैं। हमारे बिछुड़तन दादा थे, वो बाल फेंकते थे, बाबा लगाते थे, हम पकड़ते थे। तो मैंने कहा इसका फोटो खींचना चाहिए, मैंने फोटो खींचने की कोशिश की, बाबा ने खेल बंद कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे था, बाबा ने कहा बच्चे महावाक्य उच्चारण किए कि फोटो मत लो। बाबा ने क्या बोला, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं, किसका फोटो नहीं आएगा, बोलो, शिव बाबा का फोटो भी नहीं आएगा, ना ब्रह्मा बाबा की आत्मा का आएगा, और ये शरीर ये छीछी है। बाबा हमेशा जब भी देखो शरीर को तो बुलवाते थे, ये किसी काम का नहीं, वैल्यू तो आत्मा की है। देखो सारी मुरली में बार बार कहते हैं आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, शरीर भूलो 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 भूलो। आज कितनी दफा बाबा ने कहा, बाबा अपने एक्शन से भी ऐसे करते थे। जब बाबा के साथ हम ब्रह्मा भोजन करते थे ना, उन दिनों में थोड़े होते थे ऊपर, ऐसा नहीं कि अब यहां तो एक हाल भर जाता है उसमें दूसरा हाल ही भरता है। उन दिनों में हम बाबा छत पर बैठ के वो करते थे ब्रह्मा भोजन, बाबा बीच में, बाबा मम्मा दोनों होते थे बैठते थे, बाबा बीच में खाते समय पूछते चुप खाते थे, बच्चे किसकी याद में खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो। सब कहते थे बाबा शिव बाबा के साथ खा रहे हैं, चाहे ना भी वो याद हो कहते थे शिव बाबा के साथ खा रहे हैं। अच्छा जब चलते थे सड़क पर नक्की लेक पर जाते थे, बाबा पीछे मुड़ जाते थे, बच्चे किसके साथ चल रहे हो, हम कहते शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। तो याद बाबा दिलाते थे, ये बाबा हर मौके पर हर टाइम पर ये दिलाते थे, बच्चे बाबा याद करो, बाबा कोई शरीर को मत देखो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। हर बात में, खाना खाते समय, चलते समय, बैठते समय, उठते समय, क्लास में, यही याद कराते थे कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये हम भी कोशिश करते थे, उस समय तो बड़ा इजी था क्योंकि थोड़े बच्चे थे, बाबा हमारा फ्री भी था, तो बाबा बहुत बिजी है, लाखों बच्चे हो गए तो उनको तो उस वक्त तो कितने थोड़े बच्चे थे, हजारों हजार मुश्किल होंगे सारे, तो बाबा ने खिलाया पिलाया बिठाया घुमाया सब कुछ किया, बाबा ने पालना दी, बड़े खुश नसीब है कि साकार बाबा मम्मा के साथ भी ऐसे। मम्मा तो अति गंभीर थी, इतनी लगती थी, उनको देख करके लगता था कि ये तो जगदम्बा है ही है, देखो ऐसे उनकी वो पर्सनैलिटी ऐसी होती थी कि जगदम्बा है। तो इस प्रकार से चले, फिर तो हम उसके बाद चित्रशाला की बात सुना रहे थे, ये तो हमें बाबा ने जब हम समर्पण हुए 1961 में, इंजीनियरिंग पढ़ी, बाबा के पास मधुबन में आए, बाबा ने कहा था कि तुम्हें पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, अब काम ही नहीं आएगी, तुम चलो सेवा पे लग जाओ। बीई पास किया हुआ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पास करके बाबा ने कोई जॉब हमें करने के लिए नहीं कहा। देख लीजिए आप तो उस वक्त कितनी पे होती, आप हम रिटायर होते तो चीफ इंजीनियर रिटायर होते तो, लेकिन बाबा ने कहा नहीं है, सेवा में लग जाओ। भ्राता जगदीश जी के साथ हम लगे, वहां सेवा की, सीखा बहुत कुछ, बहुत कुछ किया, वहां चित्रशाला बनी, एक चित्र बनाते थे और फिर बाबा को दिखाने के लिए। एक बार हमने चित्रशाला बनाई थी, दो तीन चार आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, तो हम बाबा के पास 20 चित्र लेके आए, उसमें ऊपर हिस्ट्री हॉल बन चुका था और वहां पर रख दिया बाबा को दिखाने के लिए। मम्मा उन दिनों बनी थी, 65 के बाद की बात है। तो बाबा और दीदी आए, उन्होंने सारा देखा, बाबा को बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट अटेम्प्ट थी, बाबा को अंदर से लगा भी यहां कुछ हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रदर्शनी और म्यूजियम का ही सेवा चल रही थी, प्रदर्शनी की। तो बाबा मुझे बुलाया वहां पर अपने कमरे में, बड़ा प्यार दिया, मैं नीचे बैठ लगा कर नहीं, बच्चे गद्दी पर मेरे साथ बैठो, बिठाया जबरदस्ती, मैं तो लज्जा कर रहा था बाबा की गद्दी पर कैसे बैठो, बिठाया। फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया, हम तो खुश है, निश्चिंत भी है, खुश भी है। बाबा ने बच्चे जो बाप की गद्दी सो क्या कहेंगे, बच्चों की गद्दी, ये बाबा ने कहा। अब ज्ञान अमृत भवन किसका है, बाबा का है, हम संभालते हैं, तो बाबा की गद्दी है ना, वो छतूर में यहां पर संगम पर भी बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, वहां सत्युग में भी। अगर आप अभी सभी बाबा का कार्य कर रहे हैं, बाबा का सेंटर संभाल रहे हैं, ये समझते हैं ये घर मेरा नहीं, किसका है, बोलो किसका है, पक्का, तो बाबा का है, तो बाबा का घर है, तो यहां बाबा का संभाल दे, तो भाभी बाबा का संभालेंगे। तो भगवान के मुख से ये निकला कि बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, बहुत खुशी हुई कि भगवान के माँ के माँ वाक्य कैसे है। फिर तो क्या था, खूब बनी प्रदर्शनियां, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, दसों बीसों म्यूजियम बने, लगातार चित्रों की सेवा होती रही, बाबा को दिखाते रहे, बाबा देखते रहे, और बहुत सर्विस की वृद्धि हुई। उन दिनों में यही सेवा का साधन था, एग्जीबिशन और म्यूजियम और मेले बन गए। फिर तो ये कार्य बाबा ने इस एक महावाक्य के बोलने से, उमंग उत्साह भरने से ये करा दिया। देखो हम क्या सीखते हैं इससे, हम सभी को कोई थोड़ा भी कार्य करके आए उसको उमंग उत्साह दिलाना है। उसको वो नहीं करना है कि ठीक नहीं है, खराब है, ये है, वो है, ना ना ना, उमंग उत्साह दिला करके आगे बढ़ाना, ये बाबा से सीखा हमने, और आगे बढ़ जाएगा वो। तो ये बाबा ने बताया, ये सुनाया, तो ये सेवा बाबा ने कराई, इतनी एग्जीबिशन म्यूजियम सब बने। उसके बाद तो फिर ऐसे चलते रहे। फिर 92 में फिर जगदीश भाई जी हमारे जाते थे बड़े फॉरेन टूर पर इधर उधर, फिर बाबा ने सब उसमें यहाँ सब जब मीटिंग हुई कि जो चित्र लिटरेचर का डिपार्टमेंट प्रिंटिंग का भी आप हमें मुझे साथ संभालने के लिए आप ये कार्य करो, वो भी कार्य शुरू हुआ। और उसके बाद फिर हम 92 में सब दिल्ली को छोड़कर के कारोबार बढ़ रहा था, सेंटर बढ़ रहे थे, जिज्ञासु बढ़ रहे थे, सेवाएं बढ़ रही थी, मैगजीन बढ़ रही थी, 35,000 उस वक्त मैगजीन थी ज्ञानमृत। छोड़ करके दादी ने कहा यहीं आ जाओ, दादी ने ज्ञानमृत भवन सामने है ना बनाया, अभी आप देखते होंगे सामने वहां, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस अपनी खुली, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस बाइंडिंग वगैरह सारा घर में काम होना शुरू हुआ, यहाँ शुरू हो गया। तो करते करते अभी फिर आप इसके बाद और जब बढ़ गया, अभी नदी के पास कितने 15,000 गज में, कितने हो गया 1,20,000 फुट में एक नई बड़ी प्रिंटिंग प्रेस बाबा ने बना के दी है। वहां भी ऐसा कार्य चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे संस्था बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कारोबार भी बढ़ता जा रहा है, काम हो रहा है, कोई विघन नहीं। हम बताएं आपको, हमें आज तक कोई झंझट आया नहीं, विघन आया नहीं, सब काम अपने आप चल रहा है। ये देख लो, ये हमें कहते थे वो दिल्ली वाले, आप जा तो रहे हो आबू रोड में, एक दो साल में वापस आ जाओगे, लेकिन बताओ आबू रोड छोटा सा गांव, यहाँ आप कभी प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे कितनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, कितनी बाइंडिंग है, ये है वो है, विदाउट एनी विघन, विदाउट एनी, क्योंकि निस्वार्थ सेवा है, हमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, बाबा का सेवा है, सब अपने आप चल रहा है। तो आप तो यही पुरुषार्थ करना है, ये काम तो होते जाएंगे, स्थूल काम होंगे, परंतु हमने क्या बनना है बोलो, क्या लक्ष्य रखा है, क्या बनने का है, क्या बनना है, बोलता ही नहीं कोई, हमको बाप समान फरिश्ता बनना है, ये है लक्ष्य, कर्मातीत फरिश्ता बनना है। अब कर्मातीत कैसे बनेंगे, कर्मातीत फरिश्ता बाबा बन गए, कितने 36 से लेकर के 69 तक इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, एक एक सेकंड पुरुषार्थ किया, तो बाबा तो फरिश्ता बन गए, हमारी इंतजार कर रहे हैं कि आओ बच्चे आओ चले अपने घर। तो हमको क्या बनना है, कर्मातीत फरिश्ता, ठीक है बनेंगे, हाँ जो हाथ बनेंगे हाथ खड़ा करें, वाह सारे बनेंगे, वाह हम भी बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताओ करना क्या पड़ेगा, फिर बोलो। उसका पहला स्टेप ये है, देखो मैं बता दूं टाइम हो जाएगा, उसका पहला स्टेप तो ये है कि हम विकर्माजीत बने, पहला स्टेप। अभी हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, बस ठीक है ना। मैं समझता हूं ब्राह्मणों से विकर्म होता है कोई, नहीं होगा, विकर्म पाप कर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा फिर लास्ट। नो पाप कर्म, नो विकर्म, ये पहला स्टेप है। इससे तो मैं ब्राह्मण पार हो गए, ठीक है, हो गए पार, से सब ब्राह्मण पार है। दूसरा स्टेप क्या है फिर? दूसरा स्टेप है विकल्पाजीत, समझे, कोई विकल्प ना आए। आप विकल्प बने गलत संकल्प, बुराई का संकल्प, बुरा संकल्प, वो भी ना आए। मैं समझता हूं इसमें भी ब्राह्मण पास होंगे, ठीक है, पास है हाँ या ना, सब पास होंगे, नहीं है तो पास होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। अगर विकल्प आया, सुन लो क्या क्या उसमें होती है, विकर्म किया तो गए बाढ़ में, नहीं बताया आपको, वो तो डाउन, ब्राह्मण ही नहीं रहे। अगर विकल्प आया तो क्या होगा? जो आपने आत्मा रूपी बैटरी चार्ज की हुई है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। सुन लो, आपने अभी एक घंटा योग लगाया, कुछ तो बैटरी चार्ज की, अगर विकल्प आ गया तो गए, वो बैटरी डिस्चार्ज डाउन हो जाएगी। तो क्या डरना चाहिए कि मुझ ब्राह्मण में कोई विकल्प ना आए? ध्यान रखो, अगर आए फौरन भगाओ उसको, डोंट गिव स्पेस टू इट, उसको स्थान मत दो दिमाग में मन में ना, उसको आगे मत बढ़ाओ, डोंट एंजॉय, फिनिश करो उसको, एक सेकेंड में फिनिश करो, सेकेंड क्या, एक मोमेंट में खत्म। तो दूसरी बात क्या कही? नो विकल्प, ठीक है, इसमें भी आप पास होंगे, मैं समझता हूं पास होंगे शायद, नहीं है तो पास होना चाहिए, नो विकल्प। थर्ड क्या है फिर? विकर्म, वो कर्मातीत शिष्टा बनने की थर्ड स्टेज क्या है बोलो? नो व्यर्थ, तीसरी स्टेज है नो व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स ना हो। देख लो, अगर व्यर्थ हुआ, क्यों क्या क्यों कैसे हुआ, बाबा वो कहते हैं क्या क्यों कौन कैसे किए, ये के का में चले गए, टाइम वेस्ट किया, उससे टाइम वेस्ट होता है, भले विकर्म ना बने लेकिन टाइम तो वेस्ट होता है ना। तो बात बात कहते हैं, अगर आपने बनना है कर्मातीत फरिश्ता तो व्यर्थ भी समाप्त हो। थर्ड स्टेज है व्यर्थ समाप्ति। अब फोर्थ स्टेज क्या है जिसमें बनेंगे हम? हमारा वो साधारण भी ना हो संकल्प। हम पूछते हैं भाई अभी आप वहां से यहां आए क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं सोच रहे थे भाई, कुछ तो सोच रहे होंगे वहां से वहां पहुंचे, क्या ऐसी कोई बात नहीं थी, यानी कुछ साधारण सोच रहे होंगे कुछ। बाबा कहता है साधारण भी नहीं होना चाहिए, ना विकल्प हो, ना व्यर्थ हो, ना साधारण हो, फरिश्ता बनना है हमको, फरिश्ता बनना है तो क्या हो? सदा समर्थ होना चाहिए। मेन है संकल्प, अगर आपने संकल्प है बीज और बाकी सारा पुरुषार्थ है जाल, अगर अपने संकल्प को पकड़ लिया, उसको समर्थ बना लिया, आपका वाचा भी ठीक होगा, कर्म भी ठीक होगा, एटीट्यूड भी ठीक होगा, वृत्ति भी ठीक होगी, स्मृति भी ठीक होगी। मेन है संकल्प, अगर आपने संकल्प को समर्थ बना दिया, समर्थ भी क्या बनाना है, बाबा ने क्या बताई युक्ति, बहुत सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपल बात, क्या सोचना है? मैं शोधात्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, मस्तक मणि हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये बाबा ने आत्मा के बारे में कहा, ये याद आना चाहिए, एक बार नहीं मैं आत्मा हूं कह दिया और झुटके खाते रहे मानो एक घंटा योग कर दिया। नो 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 नो, ये योग नहीं है। बाबा ने क्या कहा, केवल बिंदु रूप को याद करना, अभी कल की मुरली आज कल की मुरली थी, सन्यासी भी ब्रह्म को याद करते हैं, नहीं बिंदु रूप को याद करने के साथ साथ घर को भी याद करो, चक्कर को भी याद करो, मेरे गुणों को भी याद करो, अपने गुणों को भी याद करो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो, वो है वास्तविक देखा जाए। वो बिंदु भी है तो ज्ञान का सिंधु भी है, शांति का सिंधु भी है, प्रेम का सिंधु भी है, गुणों का सिंधु भी है, वो सिंधु भी तो साथ है। अगर बिंदु को देखते रहे वो क्या हुआ फिर, वो जैसे वो ब्रह्म को याद करते हैं हमने बिंदु को याद कर लिया, नहीं ये उन क्वालिटीज भी आनी चाहिए, उनके कर्तव्य भी याद आने चाहिए, क्वालिटीज आनी चाहिए। हाँ बिंदु बन बिंदु में टिक टिक आकार उसमें किरणें हैं, ये गुणों की किरणें हैं, ये भी तो है साथ। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है कि वो जो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए ये समर्थ संकल्पों को बार 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 रिवाइज करना है। एक बार नहीं, जब भी समय मिले। बाबा ने उस दिन क्या कहा, पांच स्वरूपों को याद करो, अपने निराकारी स्वरूप को याद करो, मैं निराकार आत्मा हूं, केवल इतना नहीं, बाबा का बच्चा हूं, परम धाम का वासी हूं, अपने गुणों को याद करो, बाबा के गुणों को याद करो, संबंधों को याद करो। हम तो नौ संबंधों से याद करते हैं, बड़ा मजा आता है। डियरेस्ट फादर, डियरेस्ट मदर, स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सुलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बिलीव्ड माशूक, ये नौ संबंध है बाबा के साथ। रियलाइज करो उसको इमर्ज करके, संबंधों को, नौ संबंधों को याद करना चाहिए। हम तो बाकी हैं तो सर्व संबंध, लेकिन नौ सेलेक्ट करके याद करना चाहिए। आठ गुणों को याद करना चाहिए, बाबा तुम कौन हो, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान और खुशियों के भंडार, आप ये हो, हम भी तो ये है, आप मम स्वरूप है। यानी अपने माइंड को, बुद्धि को इन चीजों में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, आपका हर संकल्प समर्थ होगा, समर्थ हुआ तो आपका वाचा समर्थ, कर्मा समर्थ, आप समर्थ बन जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो वो तो पवित्र बन जाए, हमारे में पवित्रता आएगी, अशांति आएगी, और फिर इस गुणों को धारण करके चलेंगे अपने घर शांति धाम, फिर आएंगे गोल्डन एज में। ओम शांति, ओम शांति। चलो
हरिओम।